थोड़ी सी पीछे बेचैनियां हैं उठने बैठने में, थोड़ा सा इसको बच्चे स्पेशली ये जो बड़ी बच्ची इनको बिठाया करें, ये आती हैं फिर जाती हैं फिर आती हैं जाती हैं, कोई एक बच्ची ऊपर है बच्चों के साथ तो ठीक है, छोट बाकियों को कोशिश करिए इधर बैठ, ये भी तो मौके किस्मत से मिलते हैं ना कि इनको मौका मिल गया। चलिए नहमतुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, रब्बि श्रह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق نمبر 111، آیت نمبر 117 سے 129 سورة توبة، لیسن نمبر 111، آیت نمبر 117 to 129 سورة التوبہ، اور الحمدللہ سورة توبہ کا یہ آخری سبق ہے. جہاں خوشی کی بات ہے وہاں دل بھی اداس ہے. جب میں نے آج یہ آخری سبق کا نام بولا اور صبح سے ہی گھر سے ہی جب یہ تیاری کرتی ہوں اور پڑھتی ہوں چیزوں کو تو میرا دل اداس تھا کہ ہائے سورة توبہ پوری ہو رہی ہے. کسی نے اس ویکینڈ پہ کمنٹ دیا کہ ہم نے اتنا قرآن پڑھا ماشاءاللہ 10 پارے پڑھ لیے لیکن سورۃ توبہ کے ساتھ جو کیفیت ہوئی ہے وہ پیچھے کیوں نہیں تھی. یعنی یہ کوسچن تھا ان کا کہ اس نے ہمارے دلوں پہ جو اثر ڈالا ہے وہ بڑا امیزنگ ہے. تو میں نے اس کا بس دو جملوں میں جواب دیا تھا کہ عملی کردار زیادہ مؤثر ہوتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ سورۃ توبہ میں عملی باتیں ہیں, عمل کے ساتھ چونکہ اس کا تعلق ہے, صحابہ کا کردار دیکھ کر ہم سب کو پتا چلتا ہے کہ جو انہوں نے کیا ہم بھی کر سکتے ہیں. تو آج کا سبق آخری سبق ہے, چند باتیں ہم آج کے سبق کے بارے میں دیکھیں گے. جو مین تھیم آج ہم پڑھیں گے سبق کا, پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ آج کا سبق ہمیں بتائے گا کہ اس سورت کا نام سورت توبہ کیوں ہے, اور جو مرکزی خیال ہے وہ کیا ہے کہ سچی توبہ کے لیے اللہ کو کس بے قراری کی ضرورت ہوتی ہے. حقیقت یہ کہ ہم گناہ کر کر کے گناہوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس میں یہ بتائے گا کہ صرف توبہ توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوگی, اس کے لیے کس طریقے سے انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. شروع میں واقعہ ہے, بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے, اور اس کے بعد کچھ مراحل ہیں توبہ کے. جسم کو کھپانا پڑے گا, بھوک پیاس سہنی پڑے گی اس راستے میں, اللہ کے راستوں میں قدم نکالنے پڑیں گے, چھوٹا ہو یا بڑا خرچ کرنا پڑے گا. پھر دوسرا جو بنیادی ٹاپک آج کے سبق میں ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ دین کو وسیع پیمانے پر کیسے پھیلائیں. ایک اللہ تعالی کی طرف سے پلانر ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خوبصورت قسم کا پلانر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تھوڑے وقت میں دنیا سے جہالت کیسے ختم ہو, اس پہ ہم بات کریں گے. پھر دین اور فقہ کا فرق بھی سمجھ آئے گا اس سبق میں. پھر دین کے کام کا آغاز کس ترتیب سے ہو, یعنی الاقرب من الاقرب, قریبی سے شروع کر کے پھر تھوڑے دور کی طرف چلیں گے. پھر اگلی بات آج کے سبق میں جو آئے گی وہ کیا ہے کہ قرآن سنتے ہوئے مومن اور منافق کے دل کی حالت میں کیا فرق ہوتا ہے, اور آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینیاں, کتنے حریص تھے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اور ان کی ہدایت کی تڑپ تھی, اور سچوں کا ساتھ بندے کو سچا بنا دیتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 117 کو, 117, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار, بے شک اللہ تعالی مہربان ہوا نبی پر, مہاجرین پر اور انصار پر. کون سے مہاجر اور انصار؟ الذین اتبعوه فی ساعت الاسرہ, جنہوں نے مشکل وقت میں بھی نبی کا ساتھ دیا. کب؟ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ ٹیڑھا پن آنے لگا تھا, کیونکہ انسان تھے, لیکن ثم تاب علیہم, پھر اللہ نے ان پر نظر رحمت فرمائی. क्योंकि इन्नहु बिहिम रऊफुर रहीम, यकीनन वो इनके हक में बहुत मेहरबान और रहम फरमाने वाला। ग़ज़वे तबूक का क्लाइमेक्स है, तबूक की मुहिम की तरफ इशारा। तारीख में इस मुहिम को जैशुल उसरा कहा जाता है। खुश्क साली का जमाना था, मदीना में कहत था, और इन हालात में इतनी दूर जाकर एक दुश्मन जो अपने वक्त की बड़ी ताकत थी उससे लड़ना, उसको यहां साअतिल उसरा कहा गया। तंगी की घड़ी से यहां मुराद क्या है? वो वक्त जिसमें नबी सल्लम ने डिसीजन लिया कि हम रूमियों से टक्कर लेंगे, और ये इतना मुश्किल इम्तिहान था अंसार और मुहाजरीन का कि कुछ लोगों के दिल में डाउट्स आने लगे। और आ जाते हैं ऐसे वक्तों में डाउट्स, लेकिन उनके डाउट्स चूंकि उनकी जुबान पे नहीं आए तो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, और अल्लाह ने बचाया। जैसे गज़वे अहद में हमने पढ़ा कि बनु हारिसा और बनु सलेमा कबीला जो था उनके दिलों में थोड़ा सा डाउट आया था वक्ती तौर पे। उनको लगा था कि नबी सल्लम को बाहर जाकर मुकाबला नहीं करना चाहिए मुशरिकीन मक्का से, लेकिन जो ही उनको जरा सा होश दिलाया गया तो वो बिल्कुल संभल गए। बिल्कुल इसी तरह याद रखिए, ये बात नोट कीजिए, ये मेरे और आपसे मुतल्लिक है। हर बंदे का स्ट्रेस लेवल मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग मल्टीटास्किंग होते हैं, कुछ यूनिटास्किंग होते हैं। कुछ खवातीन है जब अपने घर में बस अपने बच्चों मियाँ के काम में होती हैं, एवरीथिंग इज एक्यूरेट, काम भी अच्छा, हर चीज अच्छी, वो अपने हिसाब से काम करती रहती हैं। जरा किसी एक मेहमान के आने की खबर मिली तो उनका माइंड जो है वो ट्रैप हो जाता है, वो कहती है ये नहीं हो सकता, फिर मूड भी खराब होगा, क्रैंकी भी होंगी, कुछ भी होगा। दूसरी तरफ कुछ सिस्टर्स ऐसी भी होती हैं वो हर तरह के हालात में काम कर लेती हैं, चाहे अच्छा करे बुरा करे, यानी वक्त टाल लेती हैं। उनको एक वक्त में एक से ज्यादा काम भी करने पड़े वो कर लेती हैं, और एक वक्त में ज्यादा करने पड़े तो भी। इसी तरह जैसे लोग होते हैं ना, वो बस दफा तब्दीली को बर्दाश्त नहीं करते। जो पहली सिफत बताई ना सिस्टर्स की, वो तब्दीली को बर्दाश्त नहीं करते। असल मसला चेंज होता है, मेहमानों ने क्या करना होता है, घर में बहुत खाना होता है हमारे, सिर्फ वो चेंज आ गई ना, उस चेंज को एडजस्ट करने में कुछ वक्त लग जाता है। जबकि जो दूसरी किस्म की सिस्टर्स होती हैं, या जो भी कोई हो, हम सिस्टर्स हैं तो हम सिस्टर्स की बात करते हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबूक के लिए निकलना एक असाब शिकन फैसला था। सहाबा के भी दो ही दर्जे थे, कुछ ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया था कि अल्लाह के नबी हिकमत वाले हैं, आपका कोई फैसला जज्बाती नहीं है, नंबर एक, इमोशनल डिसीजंस आप नहीं करते। दूसरी बात है कि आप किसी के दबाव में नहीं आते, प्रेशराइज नहीं होते कि कोई आपको मजबूर कर दे। और तीसरी बात है कि आपका अल्लाह पर इतना तवक्कुल है कि जब आप अल्लाह के नाम पर रूमियों से टक्कर लेने निकल रहे हैं ना, तो फतह आपकी होगी। तो जो पहला गिरोह था ना, जिसने अल्लाह के नबी को के ऊपर ट्रस्ट किया, वो तो माशाल्लाह खुशी खुशी जमे रहे, बल्कि वो खुशियां मना रहे थे कि चलो मौका मिला। लेकिन जो दूसरा गिरोह था, वक्ती तौर पर थोड़ा सा उनके साथ ये मामला हुआ, तो लिहाजा अल्लाह ने उनकी बात यहां करके कह दी कि शुरू में थिड़के थे, पंजाबी में कहते हैं ना थिड़क जाना, लेकिन फिर पलट आते हैं। तो चलिए लिखिए, जब भी कभी जिहाद कह लीजिए, दीन का काम कह लीजिए, इसकी कॉल आती है, तो लोग पांच गिरोहों में बट जाते हैं। इस सोच से लिखूंगी और बोलूंगी कि मैं इसमें कहां आती हूं। पांच गिरोह बन जाते हैं, जिसमें से तीन मोमिनों के होते हैं और दो पीछे रहने वाले होते हैं। मोमिनीन के पहले गिरोह में सबसे पहला गिरोह होता है जो सुनकर फौरन तैयार, ओके आई एम प्रेजेंट, मैं करूंगी, पॉसिबल है, आई विल डू इट। मिसाल अगर किसी से कहा जाए कि अच्छा इस संडे को हमें कहीं जाना है दर्स में, आप में से कोई राइड दे सकता है, तो जो दे सकता है वो फौरन कह देता है कि मैं कर लूंगा। कुछ लोग होते हैं वो दे सकते हैं लेकिन सोच में पड़ जाते हैं, ठीक है, एक मिसाल दी है। तो फर्स्ट थिंग, सुनकर पहले आने वाले, इनको कुरान ने क्या कहा? अस्साबिकून अलव्वलून। दूसरी किस्म के लोग होते हैं जिनको आप कहेंगे मुतरद्दीदीन, तरद्दुद में पड़ जाते हैं, डबल माइंडेड, करूं कि ना करूं। ऐसे लोग जिहाद की या दीन की बात सुनकर, इस कॉल को सुनकर सुनी अनसुनी कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजरता है ना तो उनको एहसास होता है कि मैंने ठीक नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा ही फायदा होता अगर मैं इस तबूक के सफर में निकल जाती। इसमें मिसाल याद आई है किसी की? जी वो तो रह गए थे पीछे। जी और कोई? अबू हसमा शाबर, आप इंग्लिश ग्रुप वालों ने बहुत अच्छा उस दिन प्रेजेंटेशन दिया। यकीन करें जब फिर दोस्त ने तिलावत की ना तो जिसको आप कह सकते हैं ना कि हार्ट ट्रेम्बलिंग आई थी कि मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फिरू फी सबीलिल्लाहि सअक़लतुम मिनल अर्ज़। और मैं वहां बैठी सोच रही थी कि अल्लाह करे हमारे गेस्ट और जो हॉल भरा हुआ है इनको कभी सिर्फ इस अरबी से उर्दू समझ आ रही होती तो शायद रो रहे होते। और मैंने अपने साथियों में एक दो को रोते हुए देखा सिर्फ तिलावत के दौरान। मेरा भी दिल चाह रहा था रोने को लेकिन लोगों का ख्याल करके मैंने जब्त किया। इस तरह से लग रहा था कि दिल पे चोट पड़ती है। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह सारे इंग्लिश ग्रुप के लिए बहुत शाबाश है। अबू खैसमा शुरू में तरद्दुद में पड़ गए, जी हर की कॉल आई तो सुनी अनसुनी, होता होता कि नबी चले गए। जरा सा वक्त गुजरा काफला चला गया तो फिर एहसास हुआ ये मैंने क्या किया, कितने दिन बीवी के हाथ का पका हुआ गर्म साग और रोटी खाऊंगा इस छांव के नीचे। सुन चुके ना वाक्या, चले गए। तो ये ग्रुप कौन सा होता है? मुतरद्दीन का, जो शुरू में डबल माइंडेड होते हैं, हेजिटेंट होते हैं लेकिन बाद में सही फैसला करते हैं। एक तीसरा ग्रुप है जिनको कहते हैं मुखल्लफीन, जो रह तो पीछे जाते हैं, गए नहीं जिहाद में, लेकिन बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर अपने गुनाह का इजहार किया, कन्फेस किया, सच बोला, खुद को कुछ सजाएं दी जिसका जिक्र अब अगली ही आयत में आने लगा, और तौबा की, अल्लाह इनको भी माफ कर देता है। यानी ये कन्फेस कर लेते हैं। बाकी दो किस्म के लोग जो पीछे रह जाते हैं, बातें बनाते हैं, निफाक पैदा करते हैं, खुद भी रुकते हैं दूसरों को रोकते हैं, ऐसे दो गिरोहों की तो कोई माफी नहीं है। बाकी ये तीन गिरोहों को अल्लाह ताला बचा लेता है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह में पहले गिरोह में करे, किसी मामले में पहले में नहीं है ना तो दूसरे में ले आए, और दूसरे पे ना रहे हैं तो फिर तीसरे पे तो अल्लाह जरूरी कर दे। क्योंकि जब नदमु तौबा, नदामत तौबा का नाम है, शर्मिंदगी होगी किसी काम पे तो यही बहुत बड़ी तौबा है। तो अल्लाह कहते मिम बाद इमा काद यज़ीगु कुलूब। देखिए बाज़ दफा हमें भी नेकी के बहुत सारे काम मुश्किल लगेंगे, कभी कभी हम अपने हालात के मुताबिक बहुत खुशी खुशी नेकी करने जाते हैं, फारिग तो चले गए, सेहतमंद तो चले गए, अच्छी बात ही चलते हैं, कोई दोस्त ही जिसके घर जाना है तो सोने पे सुहागा हो गया, दोस्त को भी मिल लेंगे, नेकी की दावत भी देंगे। लेकिन याद रखिए हमेशा ऐसा नहीं होता, और यही वक्त टेस्ट है, ये जमने का वक्त होता है। जब नेकी करना मुश्किल हो और बंदा जमा रहे, अल्लाह सुबहान तआला उस वक्त उस बंदे को जमा देता है। सुम्मा ताब अलैहिम, फिर अल्लाह उनकी तरफ पलट आता है और अल्लाह हमारी तरफ पलट आए। अब इन्हीं लोगों में से एक गिरोह अगली आयत में हम जिसका पढ़ने लगे ना, ये मोमिनों में से तीसरे गिरोह का तस्करा, आयत नंबर 118, वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, और इन तीन पर भी क्या अल्लाह ने रहमत की नजर की, तौबा कबूल की। कौन? अल्लज़ीना खुल्लिफू, जिनका मामला मुअख्खर कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया था। ये कौन थे? नंबर एक काब बिन मालिक, लिखिएगा, जवान थे, खूबसूरत थे, दौलतमंद थे, शायर थे, बड़ी खूबसूरत बातें करते थे। दूसरे हिलाल बिन उमैया, तीसरे मुरारा बिन रबी थे। इन तीनों का मामला भी समझ लीजिए कि ये तीनों सच्चे मुस्लिम थे, मुखलिस थे, लेकिन जब जिहाद की कॉल आई तो ये सब किसी मुश्किल में पड़े हुए थे। क्या मुश्किल थी इनकी? मुरारा बिन रबी, इनकी मुश्किल क्या थी कि इनके बाग का फल पका हुआ था, और अगर इस वक्त वो अपने फल को ना तोड़ते तो फल के जाया होने का खतरा था। आप कह सकते हैं कि मनी प्रॉब्लम था इनका। जब जिहाद की कॉल आई तो इनके दिल में आया क्या हो गया, बदर में मैं गया, उहद में मैं गया, होते होते हुनैन तक में मैं आ गया, क्या फर्क पड़ता अगर मैं तबूक में ना गया, इतनी तो नेकियां कर ली। इस सोच से ये रिलैक्स्ड हो गए। दूसरे साथी हिलाल बिन उमैया, इनका मसला क्या हुआ? इत्तेफाक देखिए कि इनके तमाम अहलो इयाल उन दिनों इनके घर जमा हुए हुए थे, फैमिली प्रॉब्लम, जब खानदान के मुख्तलिफ लोग इनके घर पे थे तो उनको डील करने में या उनको टाइम देने में इन्होंने इस कॉल को अहम नहीं समझा। क्या ये कल की बात है? क्या ये आज हमारी जिंदगियां नहीं है? कितने लोग हैं जो माली मामलात में रुक जाते हैं, जॉब है क्या करें जी और सो ऑन, और कितने लोग हैं जो खानदान और फैमिली इश्यूज में, मेहमान आए हुए हैं तो सो बिस्मिल्लाह, आपके मेहमान हमारे मेहमान, हम सबके मेहमानों को ब्रेक में फ्री खाना खिलाने को बड़ी खुशी से तैयार है, आप उनको खौर शौक से लाइए। लेकिन बात सब होता क्या है कि हम गिव अप कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे मेहमानों को बाजारों में जाना है, उनको शॉपिंग करनी है, उनको यहाँ के पार्क्स देखने हैं, उनको यहाँ की झीलें देखनी है, लेकिन उनको ये छोटी सी महफिल भी दिखा दें, ये भी तो एक उनके लिए फन होगा। चले आपके मेहमान हर रोज इधर आएंगे, इतनी सिस्टर्स को मिलेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो नियत कीजिए, इनके साथ साथ अपने अमल है, कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाए कि लोगों के आने की वजह से या कुछ ऐसे हालात की वजह से अगर आप पीछे हटने वाले हो तो हटने की बजाय उनको भी साथ ले आए। अब ये तो थे दो साथी, इनकी तो बहुत ज्यादा बातें हमें नहीं मिलती, लेकिन तीसरे सहाबी थे काब बिन मालिक, इनका वाकया बड़ी डिटेल से मिलता है। सही बुखारी में इनका वाकया बड़ी डिटेल से, और ये वाकया इन्होंने खुद अपने बेटे को सुनाया। अपनी आखिरी जिंदगी में ये नाबीना हो गए थे, तो अपने बच्चे का, बेटे का या पोते का हाथ पकड़कर ये जाया करते थे मस्जिद में, तो जब वो इनको साथ लेकर जा रहे होते थे तो ये उनको फिर अपनी बात सुनाया करते थे। और जो वाकया इन्होंने सुनाया, कोशिश करूंगी कि बस इन्हीं के अल्फाज में हल्का सा सुनाऊं। मैं आपको दावत दूंगी कि आपके घर में अगर सही बुखारी है तो आप खुद भी पढ़िए, इतना खूबसूरत है कि दिल नहीं करता छोड़ूं, कोशिश करती हूं कि जितना हिस्सा भी आपको सुना सकूं। लेकिन जिसकी वो कहते हैं ना, आप बीती वो ज्यादा खूबसूरत होती है, जो लोग अपनी बात खुद बता सकते हैं वो दूसरा कभी नहीं बताता। इसलिए कभी आप भी, मैं आप सबको एक छोटा सा मशवरा दूं, मिसाल है कि हमारी कोई सिस्टर इधर क्लास में आती थी, आज नहीं है, मिसाल देती हूँ, मेरी अपनी आदत है, मैंने कभी आपसे नहीं पूछा, कभी पूछा फलां क्यों नहीं आया। अगर आपको पता भी हो ना, मिसाल है आपकी दोस्त है आज नहीं आई, आपको पता भी है कि उनके बच्चे घर है क्योंकि आज बैंक हॉलीडे, मिसाल कभी ना बोले बीच में, खामोश रहे, क्योंकि बस दफा हम दूसरों की तरफ से ये सफाई पेश करके कितने दूसरे लोगों को भी हम उस चीज से रुकने की हुज्जत दे देते। अच्छा बच्चों की छुट्टी हो फिर तो माँ को नहीं आना चाहिए, इस तरह की कहानी है, हालांकि बच्चों को छुट्टी है तो बाप को भी छुट्टी है। तो कभी हमेशा माँ बच्चे तो घर में होते ही है, कभी बाप बच्चों को भी घर में रहने दे। खतरा यह है कि बच्चों ने माओ की शिकायतें लगानी है बढ़ के दिल बढ़ के, और घर जाने तक किचन भरान अब्बा और बच्चे बैठ के कुकिंग कर रहे होंगे तो माँ ने तो बेहोश हो जाना है कि हाय ये कुकिंग की आपने, है? तो थोड़ा सा दिल बड़ा करा करे। बहरहाल काब बिन मालिक की बात सुन लीजिए, कहते हैं काब बिन मालिक के बेटे हजरत उबैदुल्ला जो आपके नाबीना हो जाने के बाद आपका हाथ थाम कर आपको ले जाया करते थे, कहते हैं जंगे तबूक के मौके पर मेरे वालिद के रह जाने का वाकया खुद इनकी जुबानी सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैं इसके सिवा किसी और गजवे में पीछे नहीं रहा। ये आप नोट कीजिए, सिर्फ बदर का जिक्र नहीं मिलता, कहते हैं हर जंग में इससे पहले ये शामिल हो चुके थे। रसूलुल्लाह ने काफले के इरादे से चलने की जब नियत की, लेकिन इस वक्त ये किस सोच से हाजिर ना हो सके, कहते हैं या अब इसे आगे जो वाकया ना ये काब की अपनी जुबान से है, कहते हैं इस वक्त मुझे जो आसानी और कुव्वत थी वो इससे पहले कभी मुयसर ना आई, यानी मेरे पास कोई उजर नहीं था, पैसा भी बहुत था, बल्कि मेरे पास दो दो सवारियां थी, एक गाड़ी नहीं दो गाड़ियां थी, उस दौर में उठनियां होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गजवे में जाते तो ये करते कि ऐसे अल्फाज कहते कि लोग साफ मतलब ना समझे, पहले आप नहीं बताया करते थे, लेकिन चूंकि इस वक्त मौसम सख्त गर्म था, सफर बहुत दूर का था और दुश्मन बड़ी तादाद में था, बस आपने मुसलमानों के सामने साफ साफ बता दिया कि हम तबूक की तरफ जा रहे हैं और अपनी तैयारी कर लो। कहते हैं कि नबी सल्लम के साथ इस वक्त मुसलमानों की इतनी ज्यादा तादाद थी कि रजिस्टर में उनके नाम भी ना सके, सुन चुके हैं ना 30,000, तो ये भी दिल में आ गया कि जहां 30,000 जा रहे हैं तो अगर एक मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, लिहाजा कोई बाज पुरस नहीं थी। कहते हैं कि मेरा नाम रिकॉर्ड पे ना भी आता अल्लाह के नबी को पता ही नहीं चलना था, खुद सोचिए ना 30,000 लोगों का गिरोह हो तो अल्लाह के नबी को याद तो नहीं आएगा ना कौन था। कहते हैं जो भी चाहता कि मैं रुक जाऊं वो रुक सकता था, और अल्लाह के नबी पर इसका रुकना रुकना छुप सकता था, यानी अल्लाह के नबी को खबर ना होती। हाँ, अगर अल्लाह की वही आ जाए तो ये और बात थी। इस लड़ाई के सफर के वक्त फल पके हुए थे, साए भरे हुए थे, मुसलमान सहाबा और खुद नबी सल्लम तैयारियों में थे। ये तो उनकी थी, अब इनकी हालत सुनिए। कहते मेरी ये हालत थी कि सुबह निकलता कि सामान तैयार कर लूं, लेकिन इधर उधर शाम हो जाती और मैं खाली हाथ घर लौट आता। यानी कोशिश करता, नियत थी ना, जाता हूं लेकिन इधर उधर के कामों में पड़े रहते और जाने की नियत तैयारी ना कर पाते। खाली हाथ घर लौट आता और कहता कोई बात नहीं, रुपया पैसा हाथ तले है, कल खरीद लूंगा और तैयारी कर लूंगा। यानी रास्ते में जो चीजें इस्तेमाल की वो बाद में खरीद लूंगा। यहां तक कि यूं ही सुबह शाम आज कल करते करते कुछ का दिन आ गया और लश्कर इस्लाम तबूक की तरफ चल पड़ा। अब इनको पता चल रहा है सबकी तैयारियां हो रही हैं, अब जा रहे हैं। कहते जब लश्कर चल भी पड़ा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो इतना बड़ा लश्कर है ना, ऐसा ऐसा चलेंगे, मैं अकेला हूं, मैं एक दो दिन बाद भी चला, पता भी है किधर जाना है, तो मैं भी इनके पीछे पहुंच जाऊंगा। देखिए नियत पूरी है कि मैं तेज तो सवार घोड़े पे बैठूंगा और चला जाऊंगा। यूं ही आज का काम कल पर डाला और कल का परसों पर, यहां तक के लश्कर दूर जा पड़ा, गिरे पड़े लोग भी चल दिए। मैंने कहा खैर दूर हो गए और कई दिन हो गए तो क्या हुआ, मैं तेज चलकर जा मिलूंगा। लेकिन अफसोस कि ये भी मुझसे ना हो सका, इरादों ही इरादों में रह गया। अब सोचिए जरा आप, क्या ऐसा हमारे साथ नहीं होता? कितने ही मौके होते हैं कि हम सिर्फ ढील मिल करके नेकी की बातों को पीछे कर देते हैं। फजर ही को ले लीजिए, नमाज को देख लिए, फजर का अलार्म होता, कहते नहीं अभी तो 5 बजे हैं, सनराइज तो 6:30, अभी उठ गई तो क्या करूंगी, बस अभी उठती हूँ, फिर सो गए और जब उठे तो 6:45 हो गए, लटकते हैं ना। बस दफा हम नेकियों को पीछे कर देते हैं सिर्फ इस सोच से कर लूंगी। नियत इनकी अच्छी थी, इरादा भी था, लेकिन सिर्फ ढीलापन था। इस तरह इंसान ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं और फिर जब कहते कहते अब तो सब चले ही गए होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे, अच्छा मिलती हूँ नहीं, अच्छा छोड़ो मैं नहीं जाती। कहते हैं अब तो हालत ये थी कि मैं बाजारों में निकलता तो मुझे सिवाय मुनाफिकों और बीमार लूले लंगड़े अंधे मरीजों और माजूरों के अलावा कोई नजर ना आता। यानी मदीना की गलियों में तब सिर्फ या मुनाफिक थे या बीमार थे, और बीमार भी वो कि जो अब चल ही नहीं सकते, हैंडीकैप्ड। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक पहुंचकर मुझे याद फरमाया कि काब बिन मालिक ने क्या किया। देखिए यहां से देखिए, जो अच्छा लीडर होता है ना, चाहे 30,000 का लश्कर हो जाए, उसकी नजर हीरों पे होती है, उसको पता होता है कि हर बंदा कीमती है। तो लोगों ने पूछा ये अल्लाह के नबी ने कहा काब बिन मालिक को क्या हो गया। इस पर बनू सलमा के एक शख्स ने कहा, यह आप सबके गौर से सुनने वाली बात है, आपने कभी अपने ना आने वाले साथियों के लिए ये कमेंट्स नहीं देने। कहने लगे इसे तो अच्छे कपड़ों और जिस्म की राहत और आसानी ने रोक रखा है। यानी नेगेटिव फीलिंग दी कि वो छोड़े जी, वो कहाँ आएंगे, वो तो बड़े नाजुक मिजाज हैं। ये सुनकर हजरत माज बिन जबल ने फरमाया आप ये दुरुस्त नहीं फरमा रहे या रसूलुल्लाह, हमारा ख्याल तो काब की निस्बत बेहतर ही है। दुआ कीजिए हम सब ऐसे हों, जो साथी नहीं आते ना, एक जुमला भी उनके बारे में नेगेटिव ना बोला करें, अच्छी बात बोले। लेकिन अल्लाह के नबी खामोश रहे, आप कुछ नहीं बोले। जब मुझे मालूम हुआ कि अब आप लौट रहे हैं, अब तबूक का सफर हुआ, ये तो पीछे थे, कहते हैं पता चला कि अब वापिस आ रहे हैं। जब मुझे पता चला कि अब वापिस आ रहे हैं तो मेरा जी बहुत घबराया और मैं हीले बहाने सोचने लगा कि यूं यूं बहाना बनाकर अल्लाह के नबी के गुस्से से निकल जाऊंगा, अपने वालों से भी राय मिला लूंगा। यहां तक कि मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी मदीना शरीफ के करीब पहुंच गए हैं तो मेरे दिल से बातिल और झूठ बिल्कुल अलग हो गया। मैंने सोच लिया, मैंने समझ लिया कि झूठे हीले मुझे निजात नहीं दिलवा सकते, सच ही आखिर बोलबाला रहता है। बस मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, साफ साफ सच सच बात कह दूंगा। यानी इन्होंने नियत की कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब खैर से तशरीफ लाए और हस्बे आदत पहले मस्जिद में आए, और अल्लाह के नबी की आदत थी कि सफर से वापस आते तो पहले मस्जिद में आते, 2 रकत नमाज अदा की और वहीं बैठे रहे। इसी वक्त इस जिहाद में शिरकत ना करने वाले आने लगे और माजरत बहाने हीले करते रहे। ये लोग 80 से कुछ ऊपर थे, यानी तकरीबन 80-80 लोग थे जो निफाक की वजह से पीछे रहे थे और अल्लाह के नबी से झूठे बहाने करने लगे। आप इनकी बातें सुनते और अंदरूनी हालत सुपुर्दे खुदा करके जाहरी बातों को कबूल फरमाकर इनके लिए इस्तगफार करते। यहां भी एक लीडर के लिए अच्छी बात है कि जब कोई बंदा कह दे ना मेरा ये उजर है तो मान लीजिए, बस दुआ कर दें कि अल्लाह आपके लिए आसानी करे, खोज ना निकालें कि अच्छा जरा चेक करो इसकी दोस्तों से कि ये वाकई परेशान थी या इसके लिए आना मुमकिन नहीं था। नहीं, अल्लाह पे डाल दीजिए। और आपका क्या जाता है, अल्लाह के नबी ने उनकी बात मानी बल्कि उनके लिए दुआ कर दी, और ये बहुत ही अच्छा अदब है। फिर कहते हैं मैं भी हाजिर हुआ। अब जरा इनकी बेशी सुनिए। कहते हैं मैंने सलाम किया, आपने गुस्से के साथ तबस्सुम फरमाया। कहते हैं आपने मुझे इन नजरों से देखा जैसे कोई नाराज शख्स आपको देखता है। फिर मुझे अपने पास बुलाया, मैं करीब आकर बैठ गया। आपने फरमाया तुम कैसे रुक गए, तुमने तो सवारी भी खरीद ली थी। मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपके सिवा किसी और के पास बैठा होता तो बीसियों बातें बना लेता। बोलने में और बातें बनाने में मैं किसी से पीछे नहीं हूं। शुरू में मैंने बताया कि ये शायर थे और बड़ी खूबसूरत बातें करते थे, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर आज झूठ सच मिलाकर आपके गुस्से से मैं आजाद हो भी गया तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपको हकीकते हाल से मुत्तले फरमा दे, फिर आप मुझसे नाराज हो जाएं। और आज मेरे सच की बिना पर अगर आप मुझसे बिगड़े हुए तो क्या हो सकता है मेरी सच्चाई की वजह से अल्लाह ताला आपको मुझसे फिर खुश कर दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच तो ये है कि वल्लाही मुझे कोई उजर नहीं था। मुझे इस वक्त जो आसानी और फुर्सत थी इतनी तो कभी इससे पहले मुयस्सर भी नहीं हुई। आपने फरमाया हाँ तो ये है सच्चा। आपने कहा का आपने सच बोला। फिर कहा अच्छा अब तुम जाओ, अल्लाह तुम्हारे बारे में जो फैसला करेगा वही होगा। मैं खड़ा हो गया। बनु सलमा के चंद शख्स भी मेरे साथ ही उठे और साथ ही चले और मुझसे कहने लगे इससे पहले तो तुमसे कभी कोई इस किस्म की खता हुई नहीं, लेकिन ताज्जुब है कि तुमने कोई माजरत उजर तलपेश नहीं की जैसे औरों ने की। फिर अल्लाह के नबी तुम्हारे लिए इस्तगफार करते तो तुम्हें यह काफी था। यानी कहते मेरे खानदान के लोगों ने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, कितने बुद्धू हो, देखो दूसरे झूठे सच्चे बहाने बनाकर नबी से इस्तगफार की दुआएं भी ले गए और तुम बड़े बैठे हो सच बोलने। कहते हैं कि कुछ लोग मेरे इतना पीछे पड़े कि मुझे ख्याल आने लगा कि मैं भी वापस जाऊं और अल्लाह के नबी के सामने अपनी पहली बात को झुठलाकर कोई हीला बहाना पेश कर दूं। देखिए पीयर प्रेशर, कभी हम इतने नहीं बुरे होते जितना हमारे प्यारे हमें बुरा बना देते हैं। तो लोगों ने इनको प्रवोक किया। फिर मैंने पूछा क्यों जी, कोई और भी मेरे जैसा इस मामले में है? यानी इन्होंने लोगों से पूछा कि जो सच मैंने बोला है क्या किसी और ने भी बोला है? तो लोगों ने कहा हाँ, दो लोग और ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारी तरह के सच बोला है, मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया। और यहां आपको वो बात याद आनी चाहिए जो पीछे तय थी कि 10 लोग थे जो सच्चे उजर की मतलब गैर उजर के रहे लेकिन उन्होंने सच बोला। 7 वो थे जिन्होंने खुद को बांध दिया था अबू लुबाबा के साथ या उन्होंने भी कुछ बात की, लेकिन ये 3 जो एक हैं। कहते हैं जूं ही मैंने सुना कि दो और साथियों ने भी ये बात कही है तो कहते हैं कि मुझे इत्मीनान हो गया कि अब मैं अकेला नहीं हूं। ये दोनों साले जो थे ये नेक और बद्री सहाबी थे, यानी इनको इससे क्या पता चलता है कि जब हमें कोई दूसरा साथ मिल जाता है ना तो हम अपने सच पे जम जाते हैं। अकेला बंदा हकीकत में पत्ते की तरह लरसता ही रहता है। इसीलिए यकीन करें कि अगर आप अपने आप कदमों को अल्लाह के रस्तों में जमाना चाहते हैं ना तो अपने प्यारों को ले आए, अपनी दोस्तों को, अपने घर वालों को, उससे भी ना चाहते हुए भी एक हारमोनी बनने लगती है। कहते हैं मैंने अब सोचा कि नहीं बस मैं तो सच बोलूंगा। अल्लाह के नबी ने क्या सजा दी, सबको मना कर दिया कि हम 3 लोगों से कोई कलाम ना करें, खामोश, मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। लोग हमसे अलग हो गए, कोई हमसे बोलता चलता ना था, यहां तक कि मुझे तो अपना वतन परदेस मालूम होने लगा। हद तदा कतलई है मोलर्द पड़ेंगे आप, गोया मैं यहां किसी चीज से वाकिफ ही नहीं हूं। 50 रातें हम पर इस तरह गुजर गई। वो दोनों बदरी बुजुर्ग तो थक हार कर अपने मकानों में बैठ रहे, वो जरा बड़ी उम्र के थे, बाहर आना जाना भी उन्होंने छोड़ दिया। मैं जरा ज्यादा आने जाने वाला और तेज तबीयत वाला था, ना तो मैंने मस्जिद जाना छोड़ा ना बाजारों में जाना तरक किया। हाँ लेकिन कोई मुझसे बोलता नहीं था। क्या डिसिप्लिन था, देखिए सहाबर रोबोट नहीं थे, उनको इनसे प्यार था, बातें थी, लेकिन जब कह दिया इनसे कोई ना बोले तो अंदर खाते पे रूल्स नहीं तोड़वाए इनसे कह के, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम कर लो ये काम अब जल्दी से। सहाबा एक ऐसा गिरोह था जो डिसिप्लिन को मानता था, आपस की दोस्तियां कभी सिस्टम को नुकसान नहीं देती थी उनकी। कहते हैं कोई मुझसे बोलता नहीं था, चले दूसरे तो दूसरे थे, लेकिन कहते हैं मैं मस्जिद में जाता, नमाज पढ़ता। नमाज के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में लोगों के मजमे में तशरीफ फरमा होते तो मैं आता और सलाम करता और अपने जी में कहता कि मेरे सलाम के जवाब में आपके होंठ हिले भी हैं कि नहीं। देखिए ये है असल में इन पर दाकत अलैहिम अलर्द, वो शख्सियत जो इनको अपनी जानों से भी प्यारी थी, वो जात इनसे बात भी नहीं करना चाहती, चले जो मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगी। और माए इसको बड़ी अच्छी तरह जानती हैं, जब आप बच्चों से बात करना छोड़ देते हैं ना तो फिर बच्चे कितने बेचैन होते हैं, फिर कोई लाता है, कोई फूल लाता है, कोई तोहफा लाता है, लाड करता है, प्यार करते हैं, गले से लिपटते हैं। कहते हैं कि अल्लाह के नबी के होंठ भी नहीं हिलते थे, फिर आपके करीब ही कहीं बैठ जाता और कनखियों से आपको देखता रहता, यानी आंखें बचाकर। जब मैं नमाज में होता तो आपकी निगाहें मुझ पर होती थी, क्योंकि आपको पता था कि अब मुझे नहीं देखेंगे। जहां मैं नमाज के बाद आपकी तरफ इल्तफात करता तो आप मुझसे मुंह मोड़ लेते। इसे क्या पता चलता है कि अल्लाह के नबी को इनसे आप दुखी तो थे होना और किसी के मामले में दुखी होना, इस फर्क को समझिए। बहुत बड़ी नेमतों को आप इंशाअल्लाह ताला पालेंगे अगर आपने अपने प्यारों के दुख और दर्द को महसूस किया। गुस्सा तो, और गुस्सा होता है ना तो अल्लाह के नबी दूसरों से बातें करते, देखो सुस्त, देखो ऐसा, देखो ऐसा, और दुखी बंदा दुआएं करता है अकेले में तन्हाइयों में रोता है कि नहीं अल्लाह मेरे इस बंदे को जाया ना करना। अल्लाह के नबी इनको देखते थे, लेकिन जब ये देखते तो आप मुंह मोड़ लेते। कहते इस तर्क कलामी की मुद्दत ने मुझे परेशान कर दिया। अब एक वाक्य सुनिए, कहते एक रोज मैं अपने चचा साथ भाई अबू कतादा के बाग की दीवार से कूद कर इनके पास गया। दरवाजे से क्यों नहीं गए भला, उन्होंने दरवाजा खोला ही नहीं। साहबा का डिसिप्लिन देखिए, कोई आपके खिलाफ जुमला नहीं बोला कि ये तो आपकी कदर ही नहीं करते, इनको क्या करना है आपने लेकर, नहीं। कहते दरवाजा नहीं खोला, दीवार से कूद के उनके पीछे खड़ा हुआ, तो मैंने वहां जाके, कहते मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत थी, एज फेलो भी थे, कजन्स भी थे, मैंने सलाम किया लेकिन वल्लाही उन्होंने जवाब ना दिया। मैंने कहा अबू कतादा तुझे अल्लाह की कसम, क्या तू नहीं जानता कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। अबू कतादा खामोश, सोशल बॉयकॉट है। मैंने दोबारा इनको कसम दी और पूछा, वो फिर भी खामोश रहे। मैंने तीसरी बार कसम देकर यही सवाल किया, इस पर भी वो खामोश रहे और फरमाया अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है, यानी मुझे नहीं पता तो अल्लाह उसके रसूल से प्यार करता है कि नहीं करता वो जानते हैं। कहते अब तो मैं अपने दिल को रोक ना सका, मेरी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे और बहुत ही गमगीन होकर मैं फिर दीवार पर चढ़कर बाहर निकल गया। मैं बाजार जा रहा था, मैंने शाम के किप्ती को जो मदीना में गल्ला बेचने आया था ये पूछते हुए सुना कि कोई मुझे काब बिन मालिक का पता दे। ये बड़ा गौर से सुनने लगा, कहते कोई एक क्रिश्चियन शख्स था तो काब के बारे में पूछ रहा है। लोगों ने इसे मेरी तरफ इशारा करके बता दिया कि ये है। कहते वो शख्स मेरे पास आया और मुझे शाहे गस्सान का खत दिया। उस वक्त की सुपर पावर, वहां का बादशाह इनको खत देता है, जरा खत तो पढ़िए। मैं लिखा पढ़ा तो था ही, मैंने पढ़ा तो इसमें लिखा था, अब देखिए कैसे शाहे गस्सान ने काब बिन मालिक को खरीदने की कोशिश की है। लिखता है, हमें मालूम है कि तुम्हारे सरदार ने तुम पर जुल्म किया है। नबी सल्लम के खिलाफ बात कर रहा है कि ये तुम्हारे लीडर तुम पे जुल्म करते हैं, तुम कोई ऐसे गिरे पड़े आदमी नहीं हो, तुम यहां दरबार में चले आओ, हम तुम्हारी खिदमत गुजारियों के लिए तैयार हैं। यानी ऐसे लोग खरीदते हैं, ऐसे लोगों को लोग अपने लोगों में से खरीदते हैं कि आओ तुम्हें हम मोहलत देते हैं, यहां तो तुम्हें तुम्हारी कोई कदर ही नहीं करता। कहते मैंने अपने दिल में सोचा ये देखो एक और मुसीबत और आजमाइश आ गई, मैंने तो जाकर तन्नूर में उस रुक्के को फेंक दिया। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन, अगर काब बिन मालिक अल्लाह के हाथों बिके ना होते वल्लाही इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इतना प्रोपेगंडा करते कि मदीना में आपका रहना मुहाल कर देते। कितना कुछ बोलते हैं कि देखो जी इतने काम करते हैं एक नहीं किया तो ये नाराज हो गए, ये कहां की सख्ती है, ये है वो है। बातें तो बात में कुछ कर सकते हैं, पहले इनका वाक्या सुन लें। 40 रातें गुजर गई, 14 नाइट्स। कहते जब ये गुजर गई तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह का कासिद मेरे पास आ रहा है। क्या सोचा होगा भला के तौबा हो गई कबूल, माफ कर दिया? नहीं, एक और मुसीबत आ रही है। आप देखिए तो आप कहते नहीं हमसे नहीं ये मुसीबत बर्दाश्त, सॉरी वी कैंट। आप पढ़े तो सही, ये 4 दिन की मुसीबत है, इसके बाद देखिए जो खैर मिलनी है। आया क्या पैगाम दिया कि आप अपनी बीवी से भी अलग हो जाए, बीवी तो घर में थी ना, कहा बीवी से भी अलग हो जाए। मैंने पूछा क्या तलाक दे दूं या क्या करूं? उसने कहा नहीं तलाक ना दो, बस इनसे मिलो जुलो नहीं। यही पैगाम दूसरे दो साथियों के पास भी पहुंचा, हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी। मैंने तो अपनी बीवी से कह दिया कि तुम अपने मैके चली जाओ और वहीं रहो जब तक कि अल्लाह ताला इस अमर का फैसला ना कर दे, यानी बीवी को का साथ ही ना रहो ताकि कोई हद ना टूट जाए। हाँ, हिलाल बिन उमैया की बीवी ने आकर अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे खावन बहुत बूढ़े हैं, कमजोर भी हैं और घर में कोई खादिम भी नहीं है, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं इनका काम काज कर दिया करूं? बीवी की भी इताअत देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो तुमसे मिले नहीं, यानी ताल्लुक नहीं कायम होगा। उन्होंने कहा वल्लाह इनमें तो हरकत की कुव्वत ही नहीं, जब से ये बात पैदा हुई है तब से लेकर आज तक इनके आंसू थमे ही नहीं। जिनको अपने गुनाहों का गिल्ट होता है वो तो रोते रहते हैं, वो मस्तियां थोड़ी करते हैं, अटकलियां थोड़ी करते हैं, उनमें कहां ये जज्बे रहते हैं कि एक दूसरे को खुश करें, उनके तो आंखों में आंसू हैं। कहते कि जब ये पता चला कि हिलाल की बीवी को इजाजत मिल गई है रहने की, तो मुझसे मेरे बास दोस्तों ने कहा तुम भी इतनी इजाजत तो हासिल कर लो जितनी हिलाल के लिए मिली है, कि तुम भी जाके कह दो। देखिए लोग प्रवोक करते हैं ऊपर वाले, बंदा इतना बुरा नहीं होता गलत फैसला करने में, दूसरे उसको पक्का कर देते हैं। कहते हैं जब लोगों ने ये कहा तो मैंने जवाब में दिया मैं इस बारे में अल्लाह के नबी से कुछ नहीं कहूंगा। अल्लाह जाने आप जवाब में क्या इरशाद फरमा दे, यानी हो सकता है कि तलाक ही ना बात कर दे तो मैं नहीं कुछ कहता, जाहिर है वो बूढ़े आदमी है और मैं जवान हूं। खैर 10 दिन और भी गुजर गए, हमसे सलाम कलाम बंद होने को पूरी 50 रातें गुजर गई। इस 50वीं रात की सुबह को नमाज मैंने अपने घर की छत पर अदा की। मैं दिल बर्दाश्ता हैरान और परेशान इसी हालत में बैठा हुआ था जिसका नक्शा कुरान करीम ने खींचा है कि दा कतल ही मन खुश हूं, कि लोग तो अपनी जान से तंग आ गए थे, जमीन बावजूद अपनी कुशादगी के मुझ पर तंग हो गई थी कि मेरे कान में सला सीन लाम आईन सला नामी पहाड़ पर से किसी की आवाज आई। वो बावाजे बुलंद कह रहे थे ए काब बिन मालिक खुश हो जाओ। वल्लाही मैं इसी वक्त सजदे में गिर पड़ा और समझ गया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ से कबूलियत तौबा की को खबर आ गई है। और बात भी यही थी, सुबह की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर सहाबा से बयान फरमाई और ये सुनते ही वो पैदल और सवार हम तीनों की जानिब दौड़ पड़े और हमें खबर पहुंचाने लगे। एक साहब तो अपने घोड़े पर सवार मेरी तरफ खुशखबरी लिए हुए आ रहे थे, लेकिन असलम के एक कबीला असलम था, कबीला असलम के एक साहब ने दौड़कर पहाड़ पर चढ़कर बावाज़े बुलंद मेरा नाम लेकर मुझे खुशखबरी पहुंचाई। सवार से पहले उनकी आवाज मेरे कान में आ गई। जब ये साहब मेरे पास पहुंचे तो मैंने अपने पहने हुए दोनों कपड़े इन्हें बतौरे इनाम दे दिए। वल्लाही उस दिन मेरे पास कुछ और नहीं था, दो कपड़े और उधार लेकर मैंने पहने और अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होने के लिए घर से निकला। रास्ते में जोक दर जोक लोग मुझसे मिलने लगे और मुझे मेरी तौबा की बिशारत और मुबारकबाद देने लगे कि काब अल्लाह ताला का तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेना तुम्हें मुबारक हो। कभी हमें भी तो ये खबर दुनिया में मिले कि अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। मैं जब मस्जिद में पहुंचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए और दीगर सहाबा भी वहीं थे। मुझे देखते ही तलहा बिन अब्दुल्ला खड़े हो गए और दौड़ते हुए आगे बढ़कर मुझसे मुसाफा किया और मुझे मुबारकबाद दी। मुहाजरीन में से सिवाय आपके और कोई साहब खड़े नहीं हुए। हजरत काब हजरत तलहा की इस मोहब्बत को हमेशा ही अपने दिल में लिए रहे। जब मैंने जाकर रसूलुल्लाह से सलाम किया क्या कहा होगा, ताने इल्जाम नहीं, कहते उस वक्त मैंने देखा कि आपका चेहरा मुबारक खुशी से चमक रहा है, आपके चेहरे मुबारक की रगें खुशी से चमक रही थी। आपने फरमाया कि काब तुम पर तुम्हारी पैदाइश से लेकर आज तक आज जैसा खुशी का दिन कोई नहीं गुजरा। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, ये खुशखबरी आपकी तरफ से है या अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की जानिब से? आपने फरमाया, नहीं नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से। नबी सल्लम को जब खुशी होती तो आपका चेहरा चांद के टुकड़े की तरह चमकने लगता और हर शख्स चेहरे मुबारक को देखते ही पहचान लिया करता था। मैंने आपके पास बैठकर अरज किया कि या रसूलुल्लाह, मैंने नजर मानी है कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमा दे तो मेरा सब माल अल्लाह के नाम सदका है, इसके अल्लाह इसके रसूल के सुपुर्द, यानी मैं अपना सारा माल आपको देता हूं ताकि आप अल्लाह को दे दें। आपने फरमाया, थोड़ा बहुत माल अपने पास रख लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा, अच्छा, जो हिस्सा मेरा खैबर में है वो तो मेरा रहा, बाकी अल्लाह के लिए खैरात निकालूंगा। मेरा ईमान है कि सच की वजह से जो नेमत अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई वो किसी मुसलमान को नहीं मिली। इस वक्त से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी झूठ नहीं बोला और जो उम्र बाकी है इसमें भी मुझे अल्लाह से यही उम्मीद है। तो ये तलकत ताब अल्लाह कितनी ही बातें इसमें हमारे लिए। हम कहते हैं गुनाह करते हुए तौबा कबूल हो। आप देखिए, डिसिप्लिन देखिए, सहाबा का मामला देखिए, जब अल्लाह के नबी नहीं बोले तो कोई नहीं बोला, और अल्लाह के नबी बोले, अल्लाह बोला, तौबा करके जिम्मन में अल्लाह ने बोला, कहना ही नहीं पड़ा सहाबा को कि अब आप भी बोलो। इसको कहते हैं इन्नल्लाहश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम वअमवालहुम। जब अल्लाह के हाथों में बिक जाते हैं ना, फिर बंदे इसी तरह की बातें करते हैं। डिसिप्लिन जबरदस्त देखिए कैसे। अबू कतादा, हम तो रिश्तेदारियों के नाम पे कहते हैं कि अबू कतादा क्या करूं, अब तुम खानदान के हो, अब नबी कुछ कर... अच्छा, उनको ना बताना, आओ मेरे घर आओ, चाय पी लो मेरे साथ, कोई ऐसी बात नहीं। याद रखिए, इसमें हम सब के लिए सब्र की बातें। सहाबा में जज्बात थे लेकिन उनके जज्बात टेम्ड थे, कुरान और सुन्नत की लगाम पड़ी हुई थी उनकी खुशियों और गमों पे। फिर एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता है कि जो ही उनकी तौबा की खबर मिली सहाबा उनकी तरफ दौड़े। हम होते तो किधर दौड़ते, मिठाई वाली दुकान पे खाली आ जाए, लड्डू लेके जाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे। बहुत दफा हम सिर्फ रस्मों में पड़ जाते हैं, जो वक्त की खुशी होती है ना वो नहीं निभाते। नहीं, अभी तैयारी नहीं है, जाएं कैसे, 2-3 दिन बाद जाएंगे जब खुशी भी खत्म हो चुकी होती है। सच्चा प्यार करने वाला आपसे जो कौन है, जो बगैर किसी प्रोटोकॉल के किसी खुशी गमी में सबसे पहले आपको आके गले से लगा ले, यहां तक कि उन पर जमीनें बंद हो गई। ये क्या थी, ये वो बाहर की कैफियत थी, कोई बोल ही नहीं रहा। आप अपने ऊपर तो लें, वल्लाही अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, दुआ करूंगी, लेकिन सिर्फ हम अपने शौहर पे लेके सोच लें। हमारे शौहर कहे कि मैंने तुमसे बात नहीं करनी, चैन आता है। वो ना बोले, आम दिनों में परवाह भी नहीं होती, कौन से हर वक्त बैठ के लोग बातें करते हैं। जब किसी बदगुमानी के पैदा होने पर हम वन साइडेडली शैतान की पॉइंट्स मैंने इनके अलग से भी लिखे हुए थे। हजरत काब बिन मालिक कहते हैं कि ये 50 रातें मेरी किस गम में गुजरी। कहते हैं कि अगर मैं मर गया तो मुनाफ़क़त पे मरूंगा, कोई मेरा जनाजा भी नहीं पड़ेगा। और खुदा न खास्ता अगर इस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो, की सोचें क्या थी, और इनके उजर देखिए क्या थे और इनकी बातें क्या थी। मोहब्बतों की इसमें मिठास दिखी आपको? कितना प्यार था अल्लाह के नबी को अपने साथियों से। जब तक आप और मैं ये प्यार नहीं बांटेंगे लोगों को, लोग पलट के नहीं आएंगे। वल्लाही ये मोहब्बत फातहे आलम। हमारी जुबानें कुन छुरियां बन के लोगों को अनसर्टन कर देती हैं। भाई दुआ किया करें। तो मैंने आप सबको ये सबक पढ़ाया है सूरह तौबा में कई बार। कभी किसी बंदे को शादी मंगनी ब्याह कहीं मिले, साल बाद मिले, ये ना ताना दे। अल्लाह के नबी मिल रहे हैं, ये नहीं कहा नमाजें पढ़नी छोड़ दो, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। और क्या आपका ख्याल है अल्लाह के नबी दुआएं नहीं कर रहे हो? हमें डांट पड़ी है या आज भी डांट पिलाई इनको? नहीं, ये जुमला कहना बाहर जाके आज भी डांट ही पड़ी है जी, ये खुद अपनी जगह एक शिकवा है, ये शिकायत है आप लीडर की लगाते। आप ये कहें कि मुझसे आज फिर एक गलती हो गई। एक साथी है तो गाड़ी लगी तो उनका फोन आया। जब मैंने फोन उठाया तो कहती, ये नहीं कहा हम तो हमेशा दूसरों पे डाल देते ना मुर्दे, कि उसने वो ये सलाम अलैकुम साजा, मैंने किसी की गाड़ी को टक्कर मार दी है। और बाद में पता चला कि कसूर उनका नहीं था, लेकिन मुझे उनका ये जुमला बड़ा खूबसूरत लगा कि मैंने किसी की गाड़ी को मार दिया। क्यों? कि जब बंदे को अपनी गलती के आने पे अबू कतादा जो मेरे रिश्तेदार थे उनकी बेरुही पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के कतए कलामी करने पे, बीवी से अलग होने के हुक्म पे, और इसके बाद तौबा की कबूलियत की खबर सुनने पे। आज रात अकेले में बैठ के इंच नहीं है। आप देखिए कि ये जो बात थोड़ी सी रह गई इसमें कि वज़न्नु अल्ला मलजा वला मिन अल्लाह इल्ला इलैह, वज़न्नु अल्ला मलजा मिन अल्लाह इल्ला इलैह, हद तक इनको यकीन हो गया कि अल्लाह के सिवा अब कोई जाए पनाह ही नहीं है। ये कितनी खूबसूरत बात है। सब ने बाइकॉट किया लेकिन अल्लाह न कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाने खराब को तेरे अफवाए बंदे नवाज में। कि बंदा अल्लाह को कहता है कि अल्लाह मैं इतने गुना जो करके आया मुझे दुनिया में कहीं अमान नहीं मिली। देखिए ये जो बात है ना कि दाकत अलैहिम अल-अर्ध और दाकत अलैहिम अनफुसुम, ये दो चीजें इनको हाईलाइट करें। बाहर का माहौल बंदे को कर ही नहीं सकती तो इतना फिक्र नहीं होता। कोई काम आप नेकी का ना करें या गुना करें और लोग आपको बुरा कहें, इतनी तकलीफ नहीं आपको होती जब तक आपका जमीर मुतमईन है। ये जो दाकत अलैहिम अनफुसुहुम है ना, ये जमीर की पुकार है। लेकिन जब बंदे को कोई काम करने या ना करने पे अंदर से चोट पड़ती है ना, तो दाकत अनफुसुहुम इसको बंदा ओके कह सकती थी, वो जो जमीर की चुभन है ना वो नहीं सोने देती। आपको पता है कि जमीर इस दुनिया में इंसान के अंदर अल्लाह की अदालत है। जो कल मैदाने मख्शर में होना ना, फमे यामल मिसकाल जर्रतिन खैरिन जरा और शर्रिन जरा, ये दुनिया में बंदा है मोमिन का जमीर करता है। सूरह क़यामत में आप पढ़ेंगे जाके। अच्छा, क्या ये काम जिससे रुकी हूं मेरा उजर सच है? आप सच्चे ना तो आपको बिल्कुल केयर नहीं होगी, लोग आपको अच्छा कहें या बुरा आप कहते हैं छोड़ दीजिए, लेकिन अगर अंदर से चोट पड़ी तो आप रातों को सो नहीं सकेंगे, गिल्ट होता है। सुम्मा ताब अलैहिम लियतूबू, तो फिर इसने इसकी तौबा कबूल कर ली ताकि वो फिर मुतवज्जे हो जाए। इसको हाईलाइट करिए। बस दफा अल्लाह ताला बंदे को फिर मौके देता है, जैसे काब मालिक और हिलाल बिन उमैया को दिया। इन अल्लाह हुव तव्वाबुर रहीम, वो बख्शने वाला मेहरबान है। कब को और उनके साथियों को जो के मौका मिला था वो सच की बुनियाद पे था ना। तो अब उसी आयत का अगला हिस्सा, अगली आयत में हमें इसी वाक्य पे कमेंट और अमल की बातों में मिलता है, और वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए लोगो जो ईमान लाए हो, से डरो, तकवा इख्तियार करो। इख्तियार करने का हुक्म, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने से, किसी गिरोह के साथ जुड़ रहने से जो फायदे और बरकतें मिलती हैं उसका तذکرہ। बिल्कुल यही मजमून सूरत अल-अनाम की आयत 71 में हम पढ़ चुके हैं कि लहू अस्हाब यदूनहू इलल हुदा दीना, कि उसके कुछ साथी हैं जो उसको हिदायत की तरफ बुलाते ही रहते हैं कि आओ हमारी तरफ, आओ हमारी। यहां इसको दूसरे रखते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसकी हिम्मत बंधाते हैं। यहां भी यही है कि तुम एक दूसरे को थामते रहो, यही है तवासी बिल हक और तवासी बिल सबर। और यही है सूरत आले इमरान में, इस बिरु व सा बिरु व राबितु, रखते रखो, तकवा रखो, एक दूसरे को साथ थाम लो। और ये बता दिया तो यहां पे अब ये बात पूरी हुई। इसमें एक तो बात, बुख्सु फिल्ला की बेहतरीन मिसाल है। मोमिन दूसरों के लिए अल्लाह के लिए प्यार करता है और अल्लाह के लिए उनसे बुगज रखता है। फिर दूसरी बात इससे पता चलती है कि खुशी के मौके पर साथियों को मुबारकबाद देनी चाहिए। तीसरी बात पता चलती है कि गुनाहों पर जुबानी नहीं अमली तौबा की भी जरूरत होती है, जो इन्होंने अपना माल सदका कर दिया या असल में तौबा की कबूलियत। शरायत में से एक था सच के करीब हो जाता है बंदा जब सच्चे लोगों में आता है। हमें बताया जा रहा है कि तुम्हें अपना सोशल सर्कल किन लोगों में बनाना चाहिए। अब देखिए, अमूमन लोग बड़े लोगों से दोस्तियां करते हैं ना, बड़े अब किसी सेंस में भी बड़े, माल दौलत या ओहदे में बड़े। अगर आप सहाबा में से सिर्फ अबू बकर की मिसाल दें, और यह भी रिवायत में आता है कि अबू बकर ने सबसे पहले आपको मुबारक दी थी, सला पहाड़ से जो आवाज आई थी वो अबू बकर की थी। अबू कर मक्का के इन लीड्स में बस्तियां शिफ्ट की, किधर से? वलीद, मुगीरा, उत्बा, शहबा की बजाय बिलाल, गुलाम, हबाब बिन अरत, गुलाम, अम्मार बिन जासिर, गुलाम। क्यों? क्योंकि जब एक बंदा 100 झूठे दोस्तों को छोड़कर एक सच्चे दोस्त को पा लेता है ना कभी कभी, लेकिन जो मिलता है वो बहुत बड़ा मिलता है, और जो झूठ छुटते हैं वो ज्यादा दिन नहीं छुटते हैं, वो ज्यादा आते हैं। तो अल्लाह ताला इसी बात को यहां लेकर चलते हैं कि तुम भी सच्चों का साथ दो, जन्नत सस्ती नहीं है। हदीस में आते अलैकुम बिस्सिद्क, सच को थाम लो, सच जन्नत की राह दिखाता है और झूठ फजूर जहन्नुम की तरफ ले जाता है। झूठ बोलकर वक्ती फायदे मिल जाते हैं, लेकिन सच बोलकर अब भी राहतें मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम इस रास्ते में चलो, जो भी तुम्हें फायदा होगा उसको ले जाओ, जो दावों में बात करते हो उसी को अमल में दिखाओ। अब यहां अल्लाह के नबी के साथियों के लिए एक जनरल कमेंट है, मेरे आपके लिए, हम सब भी तो अल्लाह के नबी के उम्मती हैं। और वो क्या है, आयत 120, मां कहने दुओं को ये लायक ही नहीं था, वही अंदाज है जो पीछे गुजरा, यानी ये इनको लायक नहीं है, इनको सूट नहीं करता कहीं ये तखल्लफ रसूलिल्लाह, कि वो अल्लाह के रसूल को छोड़कर पीछे बैठ रहते। वला यरगबू बि अनफुसिहिम अन नफसिही, और ना ये लायक था कि अपनी जानों को आपकी जान से बढ़कर अजीज रखते। अल्लाह अकबर, कितना रोमांटिक बातें करते हो, नबी के उम्मती होने की बातें करते हो, लेकिन तुम्हें ये लायक नहीं है कि नबी उन राहों पे चले और तुम घर बैठे रहो। तुम अपनी जान को नबी की जान से नाजुक समझो। तबूक का सफर, मदीने का माहौल, जिसको कहते हैं ना कि तपती राहें मुझको पुकारे, दामन पकड़े छाओं घनेरी, ये मामला था। अल्लाह के नबी तो तपती राहों की, तुम्हारी जान ज्यादा नाजुक है, तुम मिट्टी से नहीं, चांदी से बने हो, बर्फ से बने हो, नमक से बने हो। तो याद रखो कि आपकी जान से बढ़कर अपनी जान की फिक्र करना ये मुनाफ़त है। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर से पूछा था कि उमर तुम्हें मुझसे कितना प्यार है, कहा अल्लाह के नबी अपनी जान से ज्यादा नहीं, बाकी हर चीज से ज्यादा। तो कहा कि उमर तुम मोमिन नहीं हो सकता। आपने उनके सीने पर हाथ रखा और उमर कहते हैं कि उस हाथ की बरकत से मैंने अपने दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत इस आयत की रोशनी में देखे। क्या हमें अपनी जानें ज्यादा प्यारी हैं? अल्लाह के नबी तो इस दीन को फैलाने के लिए पैदल भी चले, घोड़ों पे भी गए, गर्मियों में भी रहे, और आज हम नरम गरम गाड़ियों में भी नहीं बैठ के जा सकते। हम अपने गरम के पौश और नाजुक खूबसूरत कोच पे भी अल्लाह के दीन की बात नहीं कर सकते, वो अल्लाह के घर बनते थे। आप देख लीजिए दारुल अरकम सहाबी का घर था, जो इस्लाम का पहला मीटिंग पॉइंट बना मक्का में। सब मीटिंग है ये मक्का में जो भी होती थी वो हजरत अरकम के घर पे होती थी। हजरत अयूब अंसारी का घर अल्लाह के नबी के लिए एक होस्ट बन गया, 6 महीने आप वहां रहे। जब मस्जिद नबी में हुजरे तैयार हुए आपके इजवाज के, फिर आप वहां मूव हुए। हजरत अबू बकर हिजरत की राहें अपने लिए चीजें लेके बैठे, सहाबा के तो घर ऐसे होते थे, बल्कि उनको खुशी होती थी कि चलो अल्लाह के साथ हमारा अकाउंट मिल जाएगा, तो हो सकता है कि हमारी कमी बेशियां भी माफ हो जाए। लेकिन बात यह है, अल्लाह ताला कहते हैं अगले हिस्से को देखिए और बात समझ आएगी। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए है, ला युसीबुहुम ज़मअ वला नसबुम वला मखमसतुन फी सबीलिल्लाह, कि ना तो इनको प्यास लगी, ना मुशक्कत सही, और ना फाके पेश आए फी सबीलिल्लाह के रास्ते में। यानी आज हमारे पेट क्यों इतने भरे हुए हैं, आज हमें इस दीन की कदर क्यों नहीं, कि ना हमने इस दीन को लेने के लिए प्यास सही, ना हमने मुश्किलें सही, और ना फाके आए। वला यतऊना मौतियन यगीदुल कुफार, और ना कभी इनके कदम पड़े उन जगहों पे के कुफार के दिलों को जलाते। वला यनालू न मिन अदुविन नहीं ला, और दुश्मनों के मुकाबले में कोई भी कामयाबी हासिल करते हैं, इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिहुन, मगर इनके लिए इसके इवज नेकियों का दर्जा लिख दिया जाता है, क्योंकि इन अल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह मुहसिनों के अजर जाया नहीं करता। कितना प्यार है अल्लाह को अपने बंदों से। अल्लाह कहते तुम समझते हो तुम्हें मेरे रास्ते में प्यास सहनी पड़ी तो मैं जाया कर दूंगा, तुम्हें थोड़ी मेहनत हुई तुम्हारी कमर थक रही है, तुम थक गए हो बैठ बैठ के, तुम्हारे सर में दर्द है, तो क्या मैं जाया करूंगा? नहीं, इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिहुन। थोड़े से मुश्किल लफ्ज हैं, जमा को देख लीजिए, जोए मीन हमजा, प्यास को कहते हैं, थर्स्ट के मानों में शदीद प्यास। रोजा खोलने की दुआ में अल्लाह के नबी की सिखाई हुई क्या दुआ है? ज़हब अज़्ज़माउ वतल्लतिल उरूकु वसबत अला जो इंशाअल्लाह, प्यास चली गई, रगें तर हो गई और अजर भी साबित हो गया इंशाअल्लाह। वही लफ्ज है इधर। नसब कहते हैं मेहनत को, मुश्किल सहना। नसीब लफ्ज भी इसी से, मखमसा का जो लफ्ज है ना, इसके अंदर भूख की शिद्दत है। खमसा कहते हैं भूखे आदमी को, जिसका पेट भूख की वजह से अंदर चिपक गया हो। और मौतियन का लफ्ज वाओ तो ये हमजा से वता, रौंदने को कहते हैं, ट्रेम्पल करना। अल्लाह कहते हैं इस रास्ते में जिस किस्म की मुश्किल सह रहे हो मैं वो सारी काउंट कर रहा हूं, तुम्हें एक एक मुश्किल का अजर दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो, ये सब कुछ मिलेगा। तुम इस मिशन के राही बने हो तो मैं तुम्हें क्या तनख्वाह नहीं दूंगा? क्या मैं तुम्हें इसकी पे नहीं करूंगा? लोग घरों में आराम से बैठे, तुम अल्लाह का दीन फैलाने के लिए रात दिन निकले, लोगों को अपनी जान प्यारी, तुम्हें इस्लाम का नाम प्यारा, तो क्या अल्लाह तुम्हारी कदर ना करे? देखिए असल बंदे अल्लाह के दुनिया में वही हैं जो अल्लाह के दीन को फैला रहे हैं, पहले खुद अमल करके, सीख के सिखा के, फिर दूसरों को बता के। अगली आयतों में आएगी इसकी तब तरतीब आएगी इंशाल्लाह। हम सब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें भी इस रास्ते में चुन ले, कभी जाया ना करना। ये जो लफ्ज है ना, बिन अदु बिन नैला, अदु तो जानते हैं ना दुश्मन, अदावत, नैलन कहते हैं माले गनीमत को भी और इंतकाम को, कुछ ले लेना। लफ्ज नाइला तो सुना ही होगा ना, वही लफ्ज है ये भी। नाइला कहते हैं पा लेने वाली, टू अचीवर, तो कुछ पाती है ना। तो अल्लाह कहते हैं दुश्मन से क्या लेता है इंसान, जब माले गनीमत लेता है, जो इंतकाम लेता है, कुछ भी कर लो, इस रास्ते की कोई छोटी से छोटी कुर्बानी जाया नहीं होती। अल्लाह ताला इस रास्ते में मेहनतें कबूल करता है, जाया नहीं करता। हकीकत में इसी बात को अल्लाह ताला ने पेश किया। आप देखिए कि इस उम्मत की इस्लाह इसी तरह होगी, यकीन पैदा करें और दुनिया से बेरगबती। हजरत काब का रबू हसमा का वाकया हम सब के लिए बुनियाद है। इस्लाम की बर्बादी बुखल से होती है, इसीलिए अगली आयत में अब माल की बात है कि जहां अल्लाह के रास्ते में जाने लगती हैं तो माल भी लगेगा। आयत 121, वला युनफिकून नफकतन सगीरतन वला कबीरतन, और जो भी वो खर्च करते हैं कुछ भी छोटा या, इनका एक एक अमल उनके लिए लिख दिया जाता है। क्यों लिखा हुआ? ताकि लिख के कापियां घुमा दो, हिसाब रखते हैं पता नहीं किधर है। नहीं, लियत यहुमुल्लाहु अहसना मा कानू यामलून, ताकि अल्लाह बदला दे इनको बहुत ही उम्दा इसका जो वो अमल करते थे। ये है अल्लाह के रिकॉर्ड्स, अल्लाह ने एक एक चीज लिख के रखी हुई है। ताकि कल हमने लिए तो इफरात तो इंजॉय करते हैं लेकिन उम्मतें रुसवा हो जाती हैं। जब तक भूख प्यास नहीं सहेंगे दीन गालिब नहीं होगा। बार बार के तस्करे, आप कहेंगे हाय ब्रेक, भूख लगी है, कैंटीन खाना पीना, आज तो दिल कर रहा है कि जान की लेट कर दूं ताकि हम भी तो थोड़ी सी और भूख बर्दाश्त करें। अल्लाह के रास्तों में हम तो बैठे हुए हैं, खा पी के आए, अभी भी बच्चों की शादियों के जोड़े ढूंढते हैं, पैदल चलते हैं, बाजारों में रिक्शों में खटखट करते हैं, सहते हैं, खुशी से सहते हैं, क्योंकि पता है कि इसका रिटर्न बड़े खूबसूरत कपड़ों की सूरत में सामने आएगा। लेकिन अल्लाह कहते हैं यगीज़ अल कुफार, काफिरों को कैसे गुस्सा आता है मुसलमानों को मस्जिदों की तरफ जाते हुए देखकर होता है। उनको पता चलता है कि ये मोमिन किस रास्ते के मोमिन है, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें अपने रास्ते में निकलने वाला बना दे। किसी से मोहब्बत छोड़नी नहीं है, लेकिन हुब और अहब का फर्क पैदा कर ले। जितने दीन के काम से रुकने के बहाने बनाएंगे, उतने दिल पे गिलाफ पड़ेंगे, और एक वक्त आता है फिर कुरान असर नहीं करता। जब बंदा खुद को कायल कर लेता है ना, जिसको इंग्लिश में कन्विंस, उसको पता है मेरी बूढ़ी सास है, उसको पता है मैं बीमार हूं, उसको पता है मेरे पास माली प्रॉब्लम है, जब आप खुद को कन्विंस कर लेते हैं ना, ये हमारी हलाकत का दरवाजा खोल देता है। काब बिन मालिक की तड़प क्या थी, फिक्र क्या थी कि मैं मर गया तो मेरा क्या बनेगा, और अगर अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए तो क्या होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम मासम एंड पे पढ़ेंगे, ठीक है? तो 106 हुए, इरम 15 मिनट काफी है ब्रेक के लिए। खाना रेडी है? खाना रेडी है? ठीक है जी, इंशाल्लाह आपकी ब्रेक है, फौरन खाना लें, फौरन खाएं, और उसके बाद आते हैं, क्योंकि सूरत अल्लाह के हुक्म से आज पूरी करनी है। आखिरी आयतें बहुत खूबसूरत है, इसीलिए ब्रेक दिया आपको कि आप फ्रेश होके सुने। अपने कमेंट्स लिखिए जरा अभी तक जो सुना उसके बारे में, और मुझे इधर टेबल पे दे दीजिए। कमेंट्स लिखिए प्लीज, ऑनलाइन पे भी प्लीज। उठ सकते हैं, ऑनलाइन पे कोई माइक ले ले जी, कोई एडमिन रेडी है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। एंजॉय करें, आप लोगों ने उठने में इतनी देर लगा दी, फटाफट उठ जाए जल्दी से। 22 सेकंड में खाली कर दें चेयर, सभी उठ जाएं इधर से पीछे जाए। पीछे की रम थोड़ी सी लाइटें जला दिया करें ब्रेक में, या ब्लाइंड्स को हटा दें।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أستاذة جي. الحمد لله بہت زبردست موٹیویٹنگ انسپریشنل لیسن، اسپیشلی آپ بھی سب لکھیں آپ کی فیلنگس، لیکن میرے لیے تو اسپیشلی آپ بن مالک کا اسٹوری کہ دیکھیں انہوں نے، ان کے ذہن میں یہی آیا کہ میں نے وہ بھی کر لیا، میں نے وہ بھی کر لیا، میں نے وہ بھی کر لیا، اور ایک موقع کو ہاتھ سے گوا دیا، اور دیکھیں کتنا ان کو اس کا ملا. اللہ اللہ اکبر. ہمارے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ ہم کتنے موقعوں کو ایسے ہی ہاتھ سے گزرنے دیتے ہیں کہ پھر کر لیں گے، یا ہم نے تو اتنا کچھ کر لیا ہے. تو بہت زبردست موٹیویشنل لیسن تھا، امید ہے سب کو ایسے ہی فیلنگز ہوں گی کہ نیت کر لیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم اب سے، آج کے بعد، سورت توبہ کے سننے کے بعد، ہم کسی بات کو چھوٹا حقیر سمجھیں، نہ نیکی کو حقیر سمجھنا اور نہ برائی کو. بالکل ایسے ہی ہے نا؟ آمین آمین. اور وہی مجھے سورہ 112 بھی بہت دل کو لگی ہے کہ عابدون حامدون سائحون میں اول و آخر ہونا انشاءاللہ. Don't let go any nikki. Exactly. Bilkul. Grasp every opportunity. Bilkul. Aur humne usme bahut, matlab aaya 112 mein jo bhi qualities hain unko quickly grip karna hai aur unme hona hai inshallah. Theek hai. In sochon ke sath ab inshallah hum apne break ki taraf chalenge. Hum bhi sister Shaheen mujhe likhte hain please. Makhla hum ustaza ji ne 15 minutes ka kaha hai ki agar hum 122 شاید ان کا جو بھی ٹائم ہے سسٹر شین لکھ لیں گے، اباؤٹ 12 منٹس کا بریک ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق.
أنت الحق.
ووعدك الحق.
ووعدك الحق.
وقولك الحق.
وقولك الحق.
ولقاؤك حق.
ولقاؤك حق.
والجنة حق.
والجنة حق.
والنار حق.
والنار حق.
والساعة حق.
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا.
وعليك توكلنا.
وإليك أنبنا.
وإليك أنبنا.
وبك خاصمنا.
وبك خاصمنا.
وإليك حاكمنا.
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
وما أسرنا.
وما أسررنا. وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم
محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم
يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
وديت في الله لم تهزم ولم تهني وديت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم
يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
حبيب الله رسول الله إمام المرسلين
حبيب الله رسول الله إمام المرسلين
سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم سريت من حرم
له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين. وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم. وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير. سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين. وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم. وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير. سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
لبيك اللهم لبيك